लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत धन्य कार्लो अकुतिस के जीवनी के तीसरे भाग पर प्रकाश डाल रहे हैं। पोप और कलीसिया के लिए जो भी कष्ट सहना पड़े, मैं उसे प्रभु को अर्पित करता हूँ, ताकि मुझे शोधक अग्नि में जाना ना पड़े और सीधे स्वर्ग जा सकूं। धन्य कार्लो अकुतिस अगले 7 सितंबर को संत घोषित किए जाएंगे। वे 21वीं सदी के पहले संत होंगे। 3 मई 1991 को लंदन में जन्मे कार्लो अकुतिस इटली में पले बढ़े, जिन्हें बहुत कम उम्र से ही धर्म में गहरी रुचि थी, जिसके कारण उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जहां पौत्री युखरिस्त के चमत्कारों को सूचीबद्ध किया। लेकिन ल्यूकेमिया की बीमारी के कारण 15 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। कार्लो अकुतिस दूसरों के समान एक सामान्य किशोर थे। स्कूल में मित्रों के साथ समय व्यतीत करते थे, लेकिन उन्हें पौत्री युखरिस्त, माता मरियम एवं रोजरीमाला विनती से प्रेम था। एक धर्म शिक्षक के समान दूसरे बच्चों के सामने उन्होंने विश्वास की सच्चाई प्रकट की। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने धन्य कार्लो अकुतिस की बीमारी एवं मृत्यु के बारे सुना था। अब हम उनकी संत घोषणा की प्रक्रिया के बारे सुनेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है धन्य कार्लो अकुतिस की जीवनी पर एक चर्चा, जिसको प्रस्तुत कर रही है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। कार्लो अकुतिस की मृत्यु के बाद उनकी पौत्रता एवं चमत्कारों के लिए उनकी ख्याति इटली एवं अन्य महाद्वीपों में बढ़ती जा रही थी। कार्लो की पौत्रता की ख्याति ने उनके जीवन काल में मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद कुछ पुरोहितों और उनके जानने वालों को 24 मार्च 2011 को मिलान शहर में कार्लो अकुतिस मित्र संघ की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया, जिसका उद्देश्य था उनकी संत घोषणा प्रक्रिया का प्रसार करना। इस अभियान को दुनिया भर से आने वाले भक्तों की प्रार्थनाओं और अनुरोधों की असंख्य रिपोर्टों से बल मिला। जीवन, सद्गुणों और पौत्रता की प्रतिष्ठा के बारे में धर्म प्रांत स्तर पर जांच, जो 12 अक्टूबर 2013 को मिलान धर्म प्रांत में शुरू हुई थी, 24 नवंबर 2016 में पूरी हो गई। संत घोषणा प्रक्रिया के लिए निर्मित धर्म संघ ने 24 मई 2017 की आज्ञाप्ति के साथ प्रतिक्रियात्मक दस्तावेज की वैधता को मान्यता दी। 3 जुलाई 2018 को संत प्रकरण विभाग ने ईश सेवक के विरोचित सद्गुणों को मान्यता दी। 5 जुलाई 2018 को पोप फ्रांसिस ने संत प्रकरण विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्लो अकुतिस के विरोचित सद्गुणों की आज्ञाप्ति को अधिकृत कर दिया और उन्हें आदरणीय घोषित किया। उसके बाद धन्य घोषणा की प्रक्रिया शुरू हुई। धन्य घोषणा प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए संत प्रकरण के पोस्टुलेटर ने ब्राजील में लगातार उल्टी एवं गंभीर कुपोषण के कारण संकुचन से पीड़ित एक बच्चे के ठीक होने का मामला प्रस्तुत किया। इस घटना पर कंपो ग्रांदे धर्म प्रांत में 24 अप्रैल 2018 से 12 जून 2018 तक धर्म प्रांत जांच पड़ताल की गई। इस प्रक्रिया की वैधता को 15 मार्च 2019 को संत प्रकरण विभाग द्वारा मान्यता दी गई। 19 नवंबर 2019 को मेडिकल काउंसिल ने सर्वसम्मति से अनुकूल परिणाम के साथ पुष्टि की की चंगाई तेजी से पूर्ण स्थायी और वैज्ञानिक रूप से आकथनीय है। 17 दिसंबर 2019 को एक विशेष समिति और 4 फरवरी 2020 को कार्डिनलों एवं धर्माध्यक्षों की एक बैठक ने माना कि यह चमत्कारिक चंगाई कार्लो अकुतिस की मध्यस्थता से हुई है। इसके साथ ही 22 फरवरी 2020 को पोप फ्रांसिस ने कार्लो अकुतिस की धन्य घोषणा को अधिकृत कर दिया। इस प्रकार कार्लो अकुतिस की धन्य घोषणा 10 अक्टूबर 2020 को असीसी स्थित संत फ्रांसिस के ऊपरी महागिरजा घर में संपन्न हुआ। संत घोषणा कार्तिक कलीसिया में सर्वोच्च सम्मान है। धन्य कार्लो अकुतिस की संत घोषणा का रास्ता कोस्तारिका की एक लड़की की चंगाई से साफ हो गया। 2 जुलाई 2022 को लिलियाना की बेटी वलेरिया फ्लोरेंस में अपनी साइकिल से गिर गई थी। उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी और उसके मस्तिष्क पर दबाव कम करने के लिए क्रेनियोटॉमी सर्जरी की आवश्यकता थी। उसके डॉक्टरों ने कहा था कि उसके जीवित बचने की संभावना बहुत कम है। लिलियाना ने तुरंत धन्य कार्लो अकुतिस से प्रार्थना करना शुरू किया और 8 जुलाई 2022 को असीसी में उनकी कब्र की तीर्थयात्रा की। उसी दिन अस्पताल से उन्हें सूचित किया गया कि वलेरिया के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अगले दिन वह हिलने डुलने लगी और उसकी वाणी आंशिक रूप से वापस लौट गई। 18 जुलाई को एक सीटी स्कैन ने साबित कर दिया कि उसका रक्तस्राव रुक गया था और 11 अगस्त को वलेरिया को पुनर्वास चिकित्सा केंद्र ले जाया गया। उसमें त्वरित सुधार हुआ और 2 सितंबर को वलेरिया और लिलियाना ने धन्य कार्लो को उनकी मध्यस्थता के लिए धन्यवाद देने असीसी की एक और तीर्थयात्रा की। फ्लोरेंस महाधर्म प्रांत ने इस पर 11 मई 2023 से 28 जून 2023 तक जांच की। 19 जुलाई 2023 को संत प्रकरण विभाग ने इस जांच की कानूनी वैधता को मान्यता दी। 5 मार्च 2024 को ईश शास्त्र सलाहकारों की विशेष सभा ने कथित चमत्कार के ईश शास्त्र पहलुओं पर चर्चा की और सर्वसम्मति से सकारात्मक राय व्यक्त की गई, जिससे इस घटना को कार्लो अकुतिस की मध्यस्थता से ईश्वर द्वारा किया गया चमत्कार माना गया। 7 सितंबर 2025 को वैटिकन सिटी में धन्य कार्लो अकुतिस को संत घोषित किया जाएगा। उनकी संत घोषणा 27 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस के निधन के कारण स्थगित कर दिया गया था। धन्य कार्लो अकुतिस युवाओं के आदर्श एवं संरक्षक माने जाते हैं। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत धन्य कार्लो अकुतिस की जीवनी एवं उनकी संत घोषणा पर एक चर्चा सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
धन्य है वो पिता ईश्वर, धन्य पुत्र परमेश्वर, धन्य है तेरा काम, धन्य है तेरा नाम। धन्य पुत्र परमेश्वर, धन्य है तेरा काम, धन्य है तेरा नाम।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका परिणाम। लेखिका है दुर्गेश नंदिनी चौधरी। श्रोताओं, एक दंपति के लिए माता पिता बनना जीवन का सबसे पुरस्कृत व परिपूर्ण कर देने वाला अनुभव है। माता पिता बनने के साथ संतान का पालन पोषण का दायित्व उनके कंधे पर आ जाता है। यह गुण स्वतः माता पिता में आ जाता है। प्रेम इसका मुख्य आधार है, जो बच्चों के व्यक्तित्व विकास में उनकी मदद करता है। कुछ माता पिता अपने बच्चों को खूब मजबूत बनाने की इच्छा के चलते उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट में डाल देते हैं। अपने बच्चों के जरिए अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने की कोशिश में कुछ माता पिता अपने बच्चों के प्रति बहुत सख्त हो जाते हैं, उन्हें दूसरों से तुलना करते हैं या डरा धमका कर पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। बच्चे अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जी तोड़ परिश्रम करके भी पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनके मन में माता पिता के प्रति डर और खुद में हीनता की भावना आ जाती है। कभी कभी वे परिस्थिति का सामना न कर पाते और गलत कदम उठा लेते हैं। मेरी ऐसे माता पिता से गुजारिश है कि आप अपने बच्चे की परवरिश में उनके प्रयास पर ध्यान केंद्रित करें, न कि अंत परिणाम पर। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं दुर्गेश नंदिनी की लिखी नाटिका परिणाम।
बबलू बेटा उठो, तुम्हारा अलार्म बज रहा है। उठो बेटा, उठो बेटा, इम्तिहान नजदीक है, उठो फटाफट वरना पापा नाराज होंगे। उठ जाओ बेटा, उठो बबलू, 5 बज गए हैं। मैं भी उठ रही हूँ, पापा को भी जाना है, लंच तैयार करके देना है। बेटा तुम उठ जाओ।
ठीक है माँ, आप कॉफी बना दो। माँ, माँ पेस्ट कहाँ है?
अरे वहीं तो रखा है बेटा।
अच्छा मिल गया, ये पीछे कौन रख देता है?
सब सामने रखते हैं, कुछ ढूंढने की भी कोशिश कर लिया करो। तुमने इसकी आदत खराब कर दी है, जरा भी मेहनत नहीं होती। वो पड़ोस के शर्मा जी का बेटा राहुल कितना काम करता है और परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। एक ये हैं जिन्हें पढ़ने की भी फिक्र नहीं। इस बार कहे देता हूँ 98% आना चाहिए, हमेशा 90% पर आकर रुक जाते हो। हमारी भी कुछ इज्जत है, सुन रहे हो ना? कुछ जवाब नहीं सूझ रहा क्या?
जी पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बार।
कोशिश वोशिश कुछ नहीं, मुझे इस बार 98% चाहिए, वरना घर से बाहर कर दूंगा।
अरे अरे, कह तो रहा है बेचारा, आप ही ना बस पीछे पड़ जाते हैं उसके।
अरे चुप रहो, तुम्हारे इसी तरह पक्ष लेने से ये पिछड़ गया है। खबरदार, जो पढ़ाई के मामले में बोली तो देखना।
माँ, मेरी कॉफी तैयार है क्या?
हाँ बेटा, और वो बिस्किट भी ले लेना।
नहीं माँ, इतनी सुबह सुबह मन नहीं करता, रात में भी देर से सोया था ना, तो नींद पूरी नहीं हुई।
अच्छा अच्छा बेटा, जा कॉफी पी ले और पढ़ने बैठ जा।
जी मम्मी।
अरे सुनती हो, कहाँ है वो नालायक? पढ़ने बैठा कि नहीं? सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया तो उठा क्यों नहीं? 5 बजे कोई पढ़ाई होती है क्या? और तुम भी उसका साथ देती हो।
ओहो, रात भी देर से सोया था, पढ़ रहा था बेचारा, आप भी बस पीछे पड़ जाते हैं।
पक्ष लेना तो कोई तुमसे सीखे। लो टाइम हो गया, बस भागते रहो, आराम तो है ही नहीं साला जिंदगी में। लाओ मेरा टिफिन, चश्मा और स्कूटर की चाबी।
अभी नहीं जी, ये लीजिए, ये आपका चश्मा, टिफिन और स्कूटर की चाबी।
चलता हूँ मैं, इसे पढ़ने देना, इधर उधर नहीं जाए, समझी?
जी जी जी, बिल्कुल ध्यान रखूंगी। चलो अब रात तक की फुर्सत।
माँ, 9 बजे सर के घर पढ़ने जाना है, पानी गर्म है क्या? मैं नहा लूँ क्या माँ?
अभी तो टाइम है बेटा, तू पढ़ ले, मैं तुझे बुला लूंगी। जा कमरे में बैठ जा और पढ़ाई कर।
ठीक है माँ, ध्यान रखना मगर।
चल तू नहा ले, तुझे ट्यूशन जाना है। सुन, नाश्ता करके जाना, खाली पेट नहीं जाते।
जी माँ, आप बहुत अच्छी हैं। यदि मैं भी 4 बजे उठता ना, तो मेरा भी यही हाल होता माँ।
चल हट, मस्खरी करता है शैतान कहेगा। जा अब नहा ले, अभी पापा होते तो तुझे डांटते।
उनका तो काम ही यही है, डांटना और डांटना।
ऐसा नहीं बोलते बेटा, बहुत मेहनत की है और आज भी कर रहे हैं।
ठीक है माँ, पर इतना गुस्सा।
चल अब नहा ले, नाश्ता तैयार है, आलू के पराठे बनाए हैं मैंने तेरे लिए।
अरे वाह, मजा आ गया।
और सुन, ट्यूशन से सीधे घर आना।
ठीक है।
गहरी नींद लग गई थी, 2 घंटे हो गए। बबलू होगा, दरवाजा खोलती हूँ। अरे तू आ गया, पढ़ाई हो गई, कल पेपर है तेरे।
हाँ माँ, इसीलिए तो सर के पास गया था, तैयारी तो पूरी है। अब देखते हैं कि पेपर कैसा आता है। टेंशन टेंशन और टेंशन, ये टेंशन माँ पढ़ाई का नहीं, पापा का है बस।
अरे मत कर टेंशन बेटा, सब अच्छा होगा, चल खाना खाने।
माँ यदि 1% भी कम आया ना तो क्या होगा?
पता नहीं बेटा, तेरे पापा का गुस्सा तो तू जानता है, मुझे भी डर लगता है। चल डर मत, सब अच्छा होगा, जा थोड़ा आराम कर ले।
ठीक है। पापा लाइए, आपका बैग दे दीजिए। और ये क्या है?
यह तेरे लिए नया कैलकुलेटर है, अच्छे से पढ़ाई कर, कल पेपर है ना?
जी तैयारी कर ली है पापा।
याद है ना, 98% लाना है, जाओ अब पढ़ाई करो। अरे सुनती हो कहाँ हो, चाय बनाओ और साथ कुछ नाश्ता भी लेती आना।
जी लाती हूँ।
पढ़ाई करी इसने या इधर उधर ही भागता रहा?
नहीं नहीं, सारा दिन पढ़ता रहा। आप ही ना बस पढ़ाई के पीछे ही लगे रहते हैं।
फटाफट सारा काम निपटा कर समय पर सो जाओ, कल उसके इम्तहान है, समझी?
माँ उठो फटाफट, आज पेपर है मेरा।
हाँ बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ।
मैं तैयार हूँ माँ, मैं जा रहा हूँ।
चल ले फटाफट दही शक्कर खा, चल पेपर अच्छा करना, ध्यान से करना। हाँ
अरे सप्ताह भर गुजर गया, आज 10 तारीख है, आज तो बबलू का रिजल्ट है।
बबलू बेटा उठो, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा रिजल्ट है ना?
हाँ माँ। हे भगवान, प्लीज 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 98% बन जाए प्लीज, वरना मेरी खैर नहीं। अच्छा माँ मैं तैयार हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय।
खोलती हूँ।
हाँ, क्या बात है, मुंह उतरा है तुम्हारा, क्या तुम्हारा लाडला फेल हो गया? ये तो मुझे पता था, नालायक हमारी नाक कटवा कर ही दम लेगा, कहाँ है वो?
जी वो घर नहीं आया, राहुल बता रहा था कि वो टेंशन में था और पेड़ के नीचे स्कूल में बैठा था। मिसेस शर्मा ने बताया कि उसे 97% बने हैं। मेरा दिल बैठा जा रहा है, हमारा बबलू कहाँ है, अभी तक घर नहीं आया।
चलो भाई उसे हम ढूंढने चलते हैं। तुम तो हर बात को पकड़ कर बैठ जाती हो, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था, बच्चों को पढ़ाई के लिए ना डराना पड़ता है, समझी? चलो ढूंढने निकलते हैं।
कहाँ चलेंगे हम बताओ, अक्सर वो जब परेशान होता है तो साईं मंदिर में बैठता है जाकर।
चलो वहीं चलते हैं, साईं मंदिर ही चलते हैं। ये देखो वो बबलू, बबलू दिख गया मंदिर में, ये तुम कहती थी बिल्कुल सही निकला।
पापा मेरे 97% ही बन पाए पापा, आपने तो।
कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, बाद में बात करेंगे, अभी तो तुम घर चलो। 97% क्या कोई कम होते हैं पगले? चल बेटा घर चल तू तो।
क्या पापा आप सच कह रहे हैं?
बिल्कुल, तुम चलो घर पे।
चलो बेटा बबलू घर चलते हैं।
परिणाम, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे समता बोरेकर, दुर्गेश नंदनी और सुधीर तेलंग। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।